السلام عليكم
السلام عليكم
ورحمة الله
ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है और मुझसे भी पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, और इंसान को इस चीज़ के लिए फिक्र भी रहती है कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे खुश भी है या नहीं। अमूमन ऐसी बातों का जवाब हम यूं देते हैं कि किसी के पास माल कितना है, अगर वो बहुत ऐश वाली ज़िंदगी गुजार रहा है तो यकीनन अल्लाह ताला को उससे मोहब्बत ही होगी। अगर इस क्राइटेरिया से देखा जाए तो फिरौन और नमरूद और हामान और कारून, उनसे तो अल्लाह ताला को बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं कि अच्छा, इसकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को इससे मोहब्बत होगी, और अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मसलों में ये घिरा हुआ है, परेशानियाँ हैं, तो अल्लाह ताला को इससे कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा मसाइब आए और दीगर अम्बिया पे भी, तो यानी ये भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम जान सकें कि क्या अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर वो क्या चीज़ है जिससे हम ये जांचें? कोई फरिश्ता भी उतर के हमें नहीं बताएगा। तो आज एक बात आप गौर से सुन लीजिए जिससे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे दिल में अल्लाह ताला के लिए कितनी मोहब्बत है और कितनी जगह है। अगर मैं वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करता। रब्बे कायनात, वो फिर यकीनन मुझसे मोहब्बत ही करता होगा। फिर तो आप अगर अपने अंदर ये जज्बा पाते हैं तो खुश हो जाइए और आपको मुबारक हो। मगर साथ ही इंसान को ये फिक्र हो जाती है कि क्या वाकई जो मेरे दिल में है ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है या नहीं, और कितनी है। तो ये जांचने के लिए आसान सी बात है, दुनिया में आप देखें, आपको कैसे पता चलता है कि कोई किसी से मोहब्बत करता है? किसी का दिल खोल के तो नहीं आप देखते? फिर कैसे मालूम होता है? वो बात बात में उसको याद करता है, हर बात में उसका जिक्र ले आता है। एक माँ को ही देख लें, कहीं बैठेगी उसकी बातें शुरू बच्चों से होंगी और ख़त्म भी उन पे होंगी, चाहे आप कोई इंटरेस्ट ना ले रहे हो, लेकिन चूंकि उसके दिल में बच्चा बसा हुआ है तो वो हर बात उसी की करती है। तो वो बंदा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, हो नहीं सकता कि वो हर बात में अल्लाह का जिक्र ना करे, हर इरादे में, हर नियत में, हर काम में उसके अल्लाह ना हो। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कुरान पाक की आयात पढ़ते हैं, तो अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो यकीनन कहीं ना कहीं आपकी आंखों से आंसू ज़रूर बह पड़ेंगे। इसका मतलब है कि कहीं दिल में मोहब्बत है। इसी तरह जब अल्लाह का जिक्र आपके सामने किया जाता है तो दिल पर क्या असर होता है? क्या अल्लाह ताला की अजमत, उसकी हैबत से दिल डर जाता है, ईमान बढ़ जाता है, और अल्लाह ताला के बारे में इमोशनल फीलिंग्स बढ़ जाती हैं? जिसका मतलब मोहब्बत है। और अगर आप वाकई हर छोटी बड़ी बात में जब से दिन शुरू होता है अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, तो वाकई दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। इस तरह अगर अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में होगी तो ये मोहब्बत, ये याद उसकी आपको सोने नहीं देगी, जितना मर्जी आप थके हो। और अल्लाह ताला की मोहब्बत ना बिस्तर से उठा देती इंसान को, खड़ा कर देती मुसल्ले पे, फिर आप उससे बातें करते हैं, उसके साथ तन्हाई चाहते हैं। जाहिर है जिससे भी आपको मोहब्बत होती है आपका दिल करता है कि वो हो और मैं हूं और बस कोई और ना हो और मैं उसे खूब बातें करूं, ऐसा ही होता है ना। ये इंसान अपने जो भी वो महबूब किसी को भी बनाता है उसके लिए ऐसा ही चाहता है, वरना नींद छोड़ के खड़े होना आसान नहीं, मुंह पे पानी के छींटे मारना आसान नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते ना, तताजाफा जुनूब हमारे मदाजी यदाउन रब्बहुम खौफ व तमा, उठते हैं अपने बिस्तरों से, उनके पहलू बिस्तरों पे लगते नहीं, वो बिस्तरों से उठ जाते हैं अपने रब को पुकारने के लिए खौफ से और उम्मीद से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है, तो पहले ये तो जाने कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं और क्या कदर है आपके दिल में उसकी, उसके मुताबिक ही आप एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करता है। जितनी आपको मोहब्बत होगी ना, अल्लाह ताला को उससे ज्यादा ही आपसे मोहब्बत है। क्योंकि बुखारी में है यह हदीसे कुदसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। यानी अगर बंदा अच्छा गुमान करता है अल्लाह ताला के बारे में तो अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला करता है, अगर बंदा नेगेटिव अल्लाह ताला के बारे में सोचता है तो उसके साथ वो वैसा ही मामला करता है। फिर फरमाया, जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, जब वो अपने दिल में मुझे याद करता है तो मैं भी अपने नफ्स में उसे याद करता हूँ, और जब वो मुझे अपने प्यारों की मजलिस में याद करता है तो मैं भी अपने पसंदीदा लोगों की यानी फरिश्तों की मजलिस में उसको याद करता हूँ। यानी देखिए ना, आप जैसा आप कर रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी आपने जिक्र किया, अल्लाह ताला ने आपका जिक्र किया, आपने अकेले में जिक्र किया, उसने अकेले में जिक्र किया, आपने मजलिस में जिक्र किया, उसने फरिश्तों की मजलिस में, हमारी मजलिस से बढ़ के अच्छी मजलिस में हमारा जिक्र किया। और फिर फरमाया, जो मेरे करीब आता है एक बालिश्त, तो मैं एक गज उसकी तरफ चल के आता हूँ, और जो एक गज मेरे पास आता है तो मैं 2 गज उसके पास जाता हूँ, और जो चल के मेरे पास आता है मैं उसके पास दौड़ के जाता हूँ। सुभान अल्लाह, ये हाल होता है जब वो हम में से किसी से मोहब्बत करता है। जितनी आपको अर्ज होगी, जितनी आपको उसकी तरफ बढ़ने की का शौक होगा, उसको याद करने का, जितना आपका दिल उसके लिए तड़पता होगा, जितना उसकी याद में आपके आंसू बहते होंगे, जितने आपकी जुबान पर उसकी बातें होंगी, उतना ही वो आपसे मोहब्बत करता होगा। और ये कभी भी ना सोचे कि अल्लाह ताला को तुम मेरे से कोई मोहब्बत नहीं है, अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे ऊपर ये इतने प्रॉब्लम क्यों आते, मेरे ऊपर ये गम क्यों होते, मेरे साथ ऐसा क्यों होता और वैसा क्यों होता। तो याद रखिए, आपके जो भी मसाइल, जो भी दुख है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत नहीं करता। हर बंदा इस दुनिया में मसाइब से, मुश्किलात से गुजरता है, और ये अल्लाह ताला का निजाम है कि ये दुनिया है और यहाँ पे मसाइब होंगे, मसाइल होंगे, क्योंकि ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल जजा तो नहीं है, ये तो आजमाइश की जगह है। आप देख लें अंबिया के ऊपर कितने गमों के पहाड़ टूटे, किस तरह उनके ऊपर मुसीबतें आई, और वो तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से करीब थे। तो आप अपने गमों को और अपने प्रॉब्लम्स को अल्लाह की मोहब्बत के साथ हरगिज ना जोड़ें। अल्लाह ताला के वलियों और उसके दोस्तों और उसके अंबिया के ऊपर जो मुश्किलात आई, कभी उनको पढ़ के देखिए, और ये भी देखें कि अल्लाह ताला उनसे कितनी मोहब्बत करता था, अपने खलील से, अपने कलीम से, अपने हबीब से। तो ये दोनों सेपरेट चीजें। बस इतनी बात जरूर समझ लीजिए कि, और इसे खुश भी हो जाए कि अगर मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ तो वो मुझसे ज्यादा बढ़ के मुझसे मोहब्बत करता है। और ये यकीन रखिए कि जो भी गम और प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह ताला को इनका पता है, वो मेरी तकलीफ को जानता है, वो मुझे देख रहा है, वो बाखबर है, और उसको पसंद नहीं है कि मुझे तकलीफ आए, ये जरूर ज़हन में रखिए। और एक हदीस आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको कुछ अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला को जब बंदे से मोहब्बत होती है तो उसकी तकलीफ उसको कैसे लगती है। ये भी बुखारी में है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब भी मैंने कोई भी काम करना तो मुझे कभी भी उसमें कोई तरद्दुद नहीं होता, यानी कोई हेसिटेशन नहीं होती, सिवाय एक काम के जिसमें मुझे तरद्दुद होता है, और वो ये है कि अपने बंदे की, मोमिन बंदे की जान लेते हुए मुझे तरद्दुद होता है, इसलिए कि उसे मौत ना पसंद है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको तकलीफ दूं। सुभान अल्लाह। तो तकलीफ जो आती है तो इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि मेरे रब को पता है मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ, और उसको ये अच्छा नहीं लग रहा तो अंदर करार उतर जाता है, अंदर सुकून आ जाता है कि बस तुझे पता है ना, बस उसको पता है ना, बस तो फिर इतना ही काफी है। बाज दफा हम अपने मसाइल के लिए किसी को फोन करते हैं, किसी को बताते हैं, वो तो चाहे हमारे मसले हल भी नहीं कर सकता, लेकिन बताने से ही हमें सुकून मिल जाता है कि हमने किसी से बात कर ली। और जब ये पता हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और उसको पता है, तो फिर तो दिल में करार आ जाना चाहिए, सुकून आ जाना चाहिए। और आज की जो दुआ है वो भी इसी से रिलेटेड है कि हम अल्लाह ताला से यही मांगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती। बहुत बड़ी दौलत है, इंसान को मिल जाए बहुत बड़ी दौलत है, ये इंसान को गनी कर देती है, बेनियाज कर देती है दुनिया से। वहुब्बा मैं युहिब्बुका, और अल्लाह उसकी भी मोहब्बत मुझे दे दे जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, यानी तेरे वो बंदे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं ना, मुझे उनसे मोहब्बत दे दे। वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और अल्लाह वो काम उनकी मोहब्बत मुझे अता करा कर दे जो तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे, यानी वो काम मेरे से करा ले, उन कामों की मोहब्बत मुझे दे दे, मैं वो काम करूं शौक से मोहब्बत के साथ, मुझे इतने पसंद हो वो सारे काम जो तेरी मोहब्बत तक मुझे पहुंचा दे, यानी उनसे भी तेरी मोहब्बत हासिल हो। अल्लाहुम्मा जाल हुब्बक अहब्ब इलैया मिन नफ्सी, ए अल्लाह मुझे ऐसी मोहब्बत दे, इतनी ज्यादा मोहब्बत दे अपनी कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत हो, और अपने अहलो अयाल व अहली, और अपने अहलो अयाल से भी ज्यादा, व मिनल मा इल बारिद, और ठंडे पानी की मोहब्बत। ये ठंडे पानी की मोहब्बत को कोई जान सकता है जो प्यासा हो और उसकी जान हलक में आई, और उसके लिए तो ये होता है कि बस जैसे सांस आना, इसी तरह उसके लिए पानी होता है कि पानी का घूंट मिल जाए तो मेरी जान में जान आ जाए, क्योंकि प्यास की भी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो इंसान मांगता है, अल्लाह ऐसा कर दे कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा, अपने घर वालों की मोहब्बत से भी ज्यादा, ठंडे पानी की चाहत से भी ज्यादा मुझे तुझसे मोहब्बत हो जाए, और तेरी चाहत मेरे दिल में पैदा हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और जिन दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो इस दुआ को ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, कि उनका तो दिल चाहता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती ही जाए मेरे दिल में, और मोहब्बत निकल जाए और अल्लाह की मोहब्बत से मेरा दिल भर जाए, किसी और की मोहब्बत की जगह भी ना रहे, सबकी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हों, उससे नीचे हों, कोई मोहब्बत बराबर ना हो। अल्लाह ताला मोहब्बत में भी तौहीद को पसंद करता है। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा इस दुआ को जरूर मांगिए, इस दुआ को पसंद कीजिए और इस दुआ से ही मोहब्बत कीजिए। हम अपने दिन में जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं, ज्यादा अपनी नेकियों को बढ़ा लें, तो आज मैं सिंपल से कुछ तीन चार ऐसे काम बताऊंगी जिनके बारे में ये आता है कि जो ये काम कर ले वो फिर सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको जन्नत में जाने में अगर किसी ने ये काम कर लिए। चार काम है, वो बड़े आराम से चला जाएगा, तो काम भी आसान से। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताए हैं तो बात भी बिल्कुल सच्ची है, तो क्यों ना जान लें ऐसे वो काम जिनसे हम भी सलामती के साथ जन्नत में चले जाएं, हमें उस दिन कोई परेशानी ना हो जन्नत में जाने के लिए, दाखिल होने के लिए। इसमें पहला काम है अफशर सलाम, सलाम को आम करें, सलाम फैलाएं, सलामती से जाना चाहते हैं ना, सलाम को आम करें। आप मस्जिद जाते हैं या आप किसी से मिलने जाते हैं या आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, सलाम को आम कीजिए। दूसरे का इंतजार ना करें कि वो आपको सलाम करे, आप सलाम कीजिए। अक्सर देखा गया और अफसोस होता है, दुख होता है, मस्जिद में जाते हैं जो जिसको जानता है वो उसको सलाम करता है और दूसरे को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वो है ही नहीं। हालांकि मुसलमान का मुसलमान पे हक है कि वो उसको सलाम करे। मुसलमान को तो आगे बढ़ के बस इतना जानने की जरूरत है कि दूसरा मुसलमान है और मस्जिद में तो सभी मुसलमान हैं, जिसके सामने आप आए उसको सलाम कर लीजिए। हम सोचते नहीं ये सिर्फ उसके लिए जिसको हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, बस सिर्फ उनके लिए खास है, ऐसा नहीं है। फरिश्ते हैरान होते हैं एक मुसलमान को देख के कि जो किसी मुसलमान के पास से गुजरता है उसको सलाम ना करें। तो मस्जिद जब भी आप जाएं वहां पे सलाम को आम कीजिए और अजर भी कमाएं इसके ऊपर। ये वो चीज है जो अजर कमाने का बायस बनती है। तो दाएं बाएं सलाम कीजिए, ज्यादा सलाम कीजिए, आपको उतनी नेकियां मिलती जाएंगी। और क्या चाहिए, इसी से बात शुरू करें, सलाम के साथ शुरू कीजिए। नंबर 2, खाना खिलाएं लोगों को। लोग कोई चाहे अमीर है गरीब है, ये नहीं कि सिर्फ गरीब को खिलाने पे, कोई अमीर है, कोई आपके घर आ जाता है, कोई आपके घर काम करने के लिए ही आ जाता है, खाना खिलाइए, ज्यादा सदका खिलाएं। हम सिर्फ सोचते हैं ना कि हम कोई सदका खैरात करेंगे तो फिर ही हम खाना खिलाएंगे, नहीं, दाएं बाएं बस खाना खिलाना आपका शौक हो जाना चाहिए कि मैं लोगों को खिलाऊं। ये नहीं कि कोई मांग रहा है तो खिलाना है, नहीं, बस मुझे शौक है कि मैं खाना खिलाऊं। तो चूंकि पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, अमीर को भी भूख लगती है और गरीब को भी लगती है, तो कोई किसी स्टेटस का भी है, बस हमें अच्छा लगना चाहिए कि हम लोगों को खाना खिलाने वाले। नंबर 3, रिश्तेदारों से जोड़ के रखें, रिश्तेदारों से कत्ता ताल्लुक ना करें। रिश्तेदारों से तकलीफ भी पहुंचेगी, लेकिन अगर जन्नत में सलामती के साथ जाना चाहते हैं तो फिर रिश्तेदारों से बना के रखनी पड़ेगी। ये हमारी चाहे मजबूरी समझ लें, कुछ भी कह लें, लेकिन हम तोड़ नहीं सकते उनके साथ, चाहे हमें उनसे कोई दुख भी पहुंचता हो, तकलीफ दे बातें सुननी पड़ती हो, ताने सुनने पड़ते हो, तो ये होगा और हर खानदान में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तोड़ लें। उनके साथ नाता जोड़ के रखिए, उनका हाल अहवाल पूछते रहिए, उनकी जरूरतों में काम आइए, उनकी खुशी गमी में शरीक होइए। और चौथा काम, रात को नमाज पढ़ें जब लोग सो रहे हैं, यानी तहज्जुद। सुभान अल्लाह, तहज्जुद की नमाज, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है उसका दिल करता है कि मैं अपने रब के साथ तन्हाई इख्तियार करूं, तो एक बात सिर्फ इसमें जिसको हम नेकी समझते हैं नमाज से मुतालिक है, बाकी सब बातें तो इंसानों से ही मुतालिक है, हकुकुल इबाद में से ही है, सलाम करना भी, खाना खिलाना भी, रिश्तेदारों से जोड़ना भी। इससे पता चलता है कि बंदों के हकूक का कितना ख्याल रखने की जरूरत है। और फिर रात को उठना, ये जो रात को उठ गया उसने ये साबित कर दिया कि यकीनन कोई तो उसके अंदर तड़प ऐसी है जो उसको उठाती है। तो इससे मिलती जुलती वो भी हदीस है जिसमें जन्नत में पेंट हाउसेस के वादे हैं बाला खानों के। आप दुनिया में देखते ना हाई राइजेस जो होती हैं, ऊंची बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनमें टॉप पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं, पेंट हाउसेस जिनको कहते हैं, सबसे महंगे होते हैं, इसलिए कि वहां से दूर तक मंजर नजर आता है। तो जन्नत में भी ऐसे बाला खाने हैं जो कितने हसीन होंगे। अब दुनिया में अगर ये जगह कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी होती है, तो सोचें कि जन्नत में ऐसी जगह कैसी होगी। और इतनी वो हसीन है कि उसका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से दिखाई देता है। तो पता नहीं क्रिस्टल के होंगे या क्या, उनकी भी आप बुकिंग करवा सकते हैं बहुत आसान किस्तों पे। और उनमें जो मैंने जैसे अभी बताए चार काम, तो उनसे मिलते जुलते ही कुछ काम यहाँ पे भी हैं कि दो काम तो वही है कि खाना खिलाएं। खाना खिलाना कितना फिर इसका मतलब है कि अजर का बायस बनने वाली चीज, खाना खिलाएं जो भी आपके पास है। कोई जरूरी नहीं आप बहुत लेविश डिशेस बना के ही लोगों को देंगे तो फिर को दावत करेंगे, तो बस खाना खिलाएं। हम तो खाना भी खिलाते हैं ना तो अदले के बदले के लिए, कि इसको खाना खिला दिया, अब वेट कर रहे होते हैं अब वो कब हमें दावत पे बुलाएगा। तो ये तो इनमें नहीं आता था। फिर वो आपने उसने आपको बुला लिया, आपने उसको बुला दिया, चलो पूरा हो गया आपका हिसाब किताब यहीं पे दुनिया में। फिर आप उनमें शामिल नहीं है जो खाना खिलाते हैं, या उसने हमें 3 दफा बुला लिया, अब मैं उसको ये चलो 1 दफा बुला ही लेती हूँ, तो ये चीजें फिर इसमें शामिल नहीं होती। लिहाजा खाना खिलाना सिर्फ अल्लाह की खातिर, सिर्फ इसलिए कि हमें हम जन्नत में सलामती के साथ चले जाएं और हमें वहां के बाला खाने मिल जाएं जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आता हो, कितने खूबसूरत होंगे। मैंने उसकी बुकिंग करानी है, तो ये सोच के खिलाएं लोगों। फिर आप अपने पराए सबको खिलाएंगे, गरीब अमीर सबको खिलाएंगे, फिर आप ये नहीं देखेंगे कि किसने मुझे बुलाया और किसने नहीं बुलाया। और एक और दूसरा काम उन्हीं में से है कि जब लोग सो जाएं तब नमाज पढ़ें या नहीं तहज्जुद। ठीक है, दो काम और है जो कि नए हैं इसमें, कि एक नंबर 1 खुश कलामी, अच्छी तरह बात करना, वकूलु लिन्नासि हुस्ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया अच्छी तरह लोगों से बात किया करो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अमीर है या गरीब है, नौकर है या कोई किसी जगह का बड़ा मैनेजर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा कलाम हमारी चीज है, ये अच्छा ही रहना चाहिए हर एक के साथ। ये नहीं कि जो कोई थोड़ा स्टेटस में हमसे कम हो तो उसको तू और ओए करके बात करें, और जो बड़ा है वो यस सर हो, और छोटा है तो फिर हम छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल ही कुछ समझते ही नहीं, और कोई बड़ा है तो फिर ही उसको इज्जत देनी। सबके साथ अच्छी तरह बात कर। और दूसरा, अक्सर जो रोजे रखता है, यानी रमजान के अलावा भी रोजे रखिए। तो ये कुछ टिप्स हैं, आपको कोई कह देना कि आज आपको टिप्स दिए जाएंगी कि जिससे आप मिलियनेयर बन सकते हैं, यानी बहुत अरबपति बन सकते हैं, तो सब दौड़े पे जाएंगे। बल्कि बाकायदा इसकी टिकट्स भी मिलती हैं कि जहाँ पे ये टिप्स दी जाती हैं, ये बातें बताई जाती हैं, और लोग कहते हैं जी बड़े तजर्बे से अपने बता रहे हैं, कोई मिलियनेयर है तो वो आके बताएगा आपको कि कैसे आपने भी बनना है, तो आप दौड़े चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे सच्ची बात कोई हो नहीं सकती किसी की भी, और जो इन मर्तबों तक पहुंच गए, उन्होंने हमें बताया, अल्लाह ताला ने उनको बताया और उन्होंने हमें बताया, तो इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है। लिहाजा ये छोटी बातें नहीं है, आपको मुफ्त में मिल रही हैं बगैर टिकट खर्च किए, बस आपने करना है इनको। और क्या मुश्किल है खाना खिलाने में, और क्या मुश्किल है खुश कलामी में, और कोई मुश्किल नहीं रात को उठने में, अगर इंसान ये चाहता है कि उसको ये सब मिल जाए। जिन लोगों की ड्यूटी शुरू होती हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो बाज दफा तहज्जुद के वक्त से उनको निकलना पड़ता है घर से, तो उठ के जाते हैं ना जॉब के लिए। तो जिन्होंने ये घर लेने हैं और सलामती से जन्नत में दाखिल होना है, वो क्यों ना ये करेंगे। लिहाजा इनको मुश्किल ना समझिए। और सलाम करना तो बहुत ही आसान है, क्या जाता है हमारा उसमें, लेकिन बस हमें परवाह ही नहीं होती। इस तरह हम दिन में हम 12 रकत जो मौकेदा सुन्नतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी, उनको जरूर पढ़ते रहिए। उससे भी आपको पता है जन्नत में इंसान के लिए घर तामीर हो जाता है। 2 सुन्नतें फजर से पहले जो फजर के फर्ज हैं उनसे पहले, 4 सुन्नतें जोहर के फर्जों से पहले और 2 बाद में, और फिर 2 मगरिब के बाद और यानी मगरिब के फर्जों के बाद और 2 ईशा के फर्जों के बाद, ये कुल 12 हो गई। इनको अदा कीजिए खुशी के साथ और ये सोच के कि मेरा महल तामीर हो रहा है जन्नत में। और गैर मौकेदा सुन्नतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी पढ़ी या जिन पे दुआ भी दी है, तो ये आप जो ही मगरिब की अजान हो उसके बाद 2 सुन्नतें अदा करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को दुआ दी है। तो थोड़ा थोड़ा हम करके अगर इजाफा करते जाएंगे, जैसे अपने हमारे आगे के दिन आते जा रहे हैं, रमजान गुजरता जा रहा है, हम हर दिन को पिछले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँ तो एक दिन में ही आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, लेकिन फिर आपसे होगा नहीं। लिहाजा कोशिश ये करें कि जितना जितना एक एक दिन बताया जाता है उसको थोड़ा थोड़ा कम अज कम प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये जो दुआ मैंने आपको बताई थी ना, ये आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, मेन पेज पे ही स्लाइड्स हैं दुआ की भी और जिक्र की भी, उसमें 49 नंबर ये दुआ थी। और जो आज का जिक्र है ये भी इतना प्यारा जिक्र है, जिक्र बताने से पहले एक बात मैं आपको कहूंगी कि सोचें कयामत का दिन अगर हो और इतनी हौलनाकी हो और इतनी परेशानी हो और मुझे अपनी जान की पड़ी हो, उस वक्त कहीं से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएं और मुझे मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करा दें, कितनी बड़ी खुशकिस्मती होगी। ये हम हासिल कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका नुस्खा बता दिया, फरमाया जो ये कलिमात कह दे, रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया, जो ये कलिमा सुबह के वक्त कह दे तो मैं ये जमानत देता हूं कि मैं खुद उसको हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। ये नंबर 31 पे ये जिक्र है, आप इसको खोल के देख सकते हैं। और इस जिक्र को जब करें, इसी तरह दुआएं भी जब करें, तो आपको समझ होनी चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं राजी हो गई अल्लाह के रब होने पे, इस्लाम के दीन होने पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर। तो तमाम दुआओं को चाहे मैं आपको बता रही हूँ अरबी में, लेकिन आपके पास समझ होनी चाहिए, आपको इसका तर्जुमा दुआओं को और जिक्र का ज़रूर पता होना चाहिए, इसलिए कि हमने दुआएं पढ़नी नहीं है, मांगनी है, ठीक है। तो जब मांगेंगे ना दिल से तो तभी दुआ कबूल होती है, पढ़ने से नहीं कबूल होती। याद रखिए अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना आप कितने खूबसूरत अल्फाज से मांग रहे हैं, कितने संवार संवार के मांग रहे हैं, कितने शेरों की सूरत में मांग रहे हैं। दुआ वो ही है जो आप दिल से मांगे, अगर दिल से नहीं निकल रही तो वो दुआ नहीं है, वो आप बस कुछ पढ़ रहे हैं, वो दुआ नहीं है, ठीक है। लिहाजा ध्यान के साथ, यानी हमारा ध्यान उसके अंदर होना चाहिए, फोकस के साथ, ये नहीं अफतारी बनाते हुए ध्यान रोजा खोलने पे है, ध्यान कुछ और तरफ लगा हुआ है, अफतारी की तरफ लगा हुआ है और रटी रटाई दुआएं जुबान से निकलती जा रही, या किताब खोल के बैठे में और पेज 1 से लेके आखिर पेज तक आपने दुआएं पढ़ ली हैं, तो ये दुआ नहीं है। याद रखिए दुआ अल्लाह ताला से ताल्लुक का नाम है, इसलिए प्लीज दुआओं को समझ के, अगर आपने अरबी में ये मसनून दुआएं पढ़नी है, कुरानी दुआएं पढ़नी है, इनका तर्जुमा आपको समझ होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। इस तरह अगर आप अपने ये अरबी में नहीं मांगना चाहते, आप अपनी वैसे ही अपनी जुबान में भी मांग सकते हैं, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, हर चीज से ज्यादा अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, हाँ, जब आप मसनून दुआएं मांगेंगे तो आप देखेंगे कि उससे आपको दुआ का जो मसनून दुआ के अल्फाज हैं उसका सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का महीना बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.